हुजूर की विलादत से कुछ महीने पहले की बात थी कि आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालिदा आमिना आजादार हो गए।
ध्यान रखो कि तुम बुतों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ।
जी मेरे मालिक।
जिस रात पैगंबर की विलादत हुई खाने काबा में अजीब वाकया पेश आया।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बुत बगैर किसी वजह के अपने आप गिरते क्यों जा रहे हैं?
बड़ी अजीब बात है, ऐसा वाकया तो पहले कभी नहीं हुआ था। चलो चलते हैं, अब्दुल मुत्तलिब को बताते हैं, वो क्यों नहीं आए?
वो अपनी बहू के घर पर हैं। आज रात आमिना के घर में विलादत होने वाली है।
आओ चलो चलकर उन्हें बताते हैं। चलो चलो।
हाँ, हुजूर की विलादत की रात ताके किसरा मुनहदिम हो गया। आतिश कदए फारस की आग बुझ गई, सावा झील खुश्क हो गई और काबे के अंदर मौजूद बुत गिर गए, ताकि सबको मालूम हो जाए कि एक बुत शिकन आने वाला है जो बुत परस्ती की बिसात को पलट कर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का दुरूद व सलाम उस नबी पर जो अदल व इंसाफ और मुसावात के कायम के लिए मबऊस हुआ। ऐ लोगों, मैंने इस बाजार में एक दुकान किराए पर ली है ताकि तुम लोगों से ज्यादा करीब रहूं और इस मस्जिद में नमाज पढ़ता रहूं ताकि तुम लोगों की बातों को सुन सकूं। अब मैं तजवीज पेश करता हूं कि तुम में से हर तबका, मजदूर, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले और ताजिर अपने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें ताकि वो अपने तबके के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करें और मसाइल और उलझनों के बारे में हमें भी इत्तला दे सकें। भाइयों, अपने इंतखाब में ध्यान दें ताकि ऐसा ना हो कि आपका कोई हक जाया हो जाए। जी आप तशरीफ ले जाएं। खुदा हाफ़िज़।
आली जनाब, पिछले हफ्ते मुझे खुदा ने एक छोटा भाई अता किया है। मैंने अपने वालिद से कहा है कि उसका नाम मोहम्मद रखें।
मोहम्मद, कितना खूबसूरत नाम है। मोहम्मद से बेहतर क्या नाम हो सकता है? क्या तुम्हारे वालिद मांग गए?
जी हाँ, और कल मेरे छोटे भाई के नाम रखने का दिन है।
कल 27 रजब है, कितना अच्छा दिन है।
कल के दिन की क्या खास बात है?
कल के रोज मुसलमान ईद मनाएंगे। आलम इस्लाम का सबसे बड़ा वाकया इसी दिन रूनुमा हुआ था। यकीनन इसीलिए तुम्हारे वालिद ने कल के दिन का इंतखाब किया है, 27 रजब। जाहिलियत के दौर में अरबों की जिंदगी ज्यादातर लड़ाई और खून बहाने में गुजर जाती थी। जंगों में फतेह हासिल करने वाले औरतों और लड़कियों को असीर करके अपने साथ ले जाते थे। उस जमाने में दूसरे कबीलों पर हमला करना और उनके माल और दौलत पर कब्जा करना मामूल के काम समझे जाते थे। غارت اور لوٹ مار، جوئے اور سودخوری اور دیگر اخلاقی برائیوں سے حجاز کی فضائیں مقدر تھیں۔ ان کے نزدیک غیرت و شجاعت کا جنگ میں بے رحمی اور سنگدلی سے زیادہ کوئی مفہوم نہیں تھا۔ وہ انتہائی قسی القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو زندہ گڑوا دیتے تھے، اور یہ غیرت مندی کا اعلیٰ ترین مرتبہ شمار ہوتا تھا۔ مکہ تجارتی شاہراہ پر واقع اور قافلوں کے گزرنے کا مقام تھا۔ مکے کے قبائلی سردار اور تاجر سود خوری کے ذریعے دولت کماتے تھے اور اپنے ماتحتوں اور غربا پر ظلم و ستم روا رکھتے تھے۔ نہ ہی کوئی امید تھی اور نہ ہی کوئی دین جو ظالموں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے، اور نہ کوئی طاقت تھی جو مظلوموں کی مدد کرے۔ خانہ کعبہ، جس کی تعمیر ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کی تھی، اب مختلف قبیلوں کے 360 چھوٹے بڑے بتوں کی نگہداشت کی جگہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایسے ناگفتہ بے حالات میں خدا کے آخری نبی منسہ ظہور پر آ گئے، تاکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک صالح پیغمبر اپنے معاشرے کے لیے عظیم مصلح اور تمام انسانی معاشروں کے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ مکے کے شمالی حصے میں ایک اونچے پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا غار واقع ہے، جس کا نام غار ہرا ہے۔ اس سے پہلے کہ محمد نبوت کے لیے مبعوث ہو جائیں، اس غار میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے۔ آپ خدا کے عظیم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر تھے۔ آپ نے اپنے آبا و اجداد کی طرح بتوں کو اپنے خداؤں کے طور پر قبول نہیں کیا۔ محمد ہر سال ایک مہینے کے لیے مکے کے شور غل سے دور چلے جاتے تھے، اور اس غار میں اپنے خدا کی بارگاہ میں خلوت نشین ہو جاتے تھے۔ آپ کی عمر 40 برس تھی کہ اچانک اسی غار میں فرشتہ وحی نے آپ پر نازل ہو کر آپ کو نبوت کی بشارت دی اور قرآن کی بعض آیات آپ کے لیے تلاوت کی، جن کے ہر لفظ سے نور الہی جھلکتا تھا۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام پر، وہ پروردگار جس نے خلق کیا۔ بعد میں اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ حضور غار حرا سے نیچے اترے، وہ الفاظ جن کی تعلیم جبرائیل نے آپ کو دی تھی، بے اختیار ایک شفاف چشمے کی طرح آپ کے دل میں جاری تھے۔ ایک طرف حضور پر عائد کی جانے والی رسالت کی ذمہ داری کا شوق و اشتیاق، اور دوسری جانب اس کی اہمیت اس بات کا باعث بنی کہ رسول خدا اپنی زندگی کے نادر لمحات کا تجربہ کریں۔ اس وقت رسول خدا کی زوجہ کرامی حضرت خدیجہ نے اس حال میں کہ ان کے آنسو جاری تھے اس طرح کہا، کیسی تعجب خیز خبر ہے، خداوند مہربان آپ کو اس سخت راہ پر جس پر آپ گامزن ہیں کامیاب فرمائے۔
تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
عبداللہ، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ خاتون کون تھیں جو سب سے پہلے پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں؟
میرے خیال سے ایمان لانے والی عورتوں میں سب سے پہلی جناب خدیجہ ہیں۔
آفرین ہو تم پر۔ اور پہلا مرد؟
मुझे नहीं मालूम, क्या वो आप नहीं थे?
क्या तुम्हें मालूम है कि जो मर्द सबसे पहले रसूलुल्लाह पर ईमान लाया उस वक्त वो तुम्हारा हम उम्र था?
क्या मेरा हम उम्र था?
हाँ हाँ मेरे बेटे।
वहाँ तो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं।
लगता तो ऐसा है कि इबादत कर रहे हैं।
वो लोग हैं कौन?
वो औरत उसकी जोजा है और वो बच्चा उसका भाई अली है।
इस आसमान के नीचे इन दोनों के अलावा कोई भी दीन मोहम्मद को नहीं मानता।
देखो वो कितने खूबसूरत अंदाज में इबादत कर रहे हैं, देखो तो जरा।
बेकार हैं।
आखिर ये लोग थक जाएंगे और इस काम को करना बंद कर देंगे। काश के मोहम्मद ने तिजारत को जारी रखा होता ताकि शहर के अमीर लोगों में हो।
मुझे तो खदीजा पर ताज्जुब हो रहा है, वो अपने शौहर को इस काम से रोक ही नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ावा दे रही हैं।
अगरचे कुरैश के लोग कमोबेश उन पर नजर रखते थे लेकिन पैगंबर और उनके कलील पैरोकारों को कोई अहमियत नहीं देते थे और वो इस इंतजार में थे के आं हजरत के पैरोकार थक हार कर नए दीन को खैरबाद कह देंगे और हुजूर को अकेला छोड़ देंगे। कुरैश के सरदार कभी खामोशी तोड़कर इस सिलसिले में बहस गुफ्तगु करते थे।
सलाम हो कुरैश के सरदारों पर।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इब्ने नौफल। भाई तुम तो अरब के दाना लोगों में से हो, तुम क्यों इजाजत देते हो अपनी भतीजी खदीजा जैसी मोहतरम खातून को कि इस हद तक अपने शौहर की इताअत करे? क्यों इजाजत देते हो? मुझे डर लगता है। मालूम है मुझे किस चीज से डर लगता है?
नहीं, किस चीज से डरते हो?
मैं इस चीज से डरता हूं कि जल्द या बदेर खदीजा अपनी तमाम दौलत और हैसियत को मोहम्मद के अजीबो गरीब कामों के लिए वक्फ कर देगी।
अबू लहब, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता नहीं होगा, तौरात और इंजील में आखिरी नबी के आने की बशारत दी गई है। मोहम्मद सच्चे हैं, आज तक किसी ने उनसे कोई झूठ नहीं सुना है। मुझे नहीं मालूम तुम लोग क्यों उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हो।
तुम यकीन करते हो ये काफी है।
उमैया, तुमने तो ईसाई उलमा की किताबों का मुताला किया है, क्या तुम मेरी बात की ताईद करते हो?
मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ खुदा का नबी है वो। कौन सा खुदा? जानते हो मुझे मोहम्मद की सच्चाई में कोई शक तर्दीद नहीं है। लेकिन उसकी अक्ल पर मुझे शक है। मेरी नजर में मोहम्मद या तो दीवाना है या जादूगर। इन दोनों सूरतों में मेरा दीवानों के साथ कोई लेना देना है और ना ही जादूगरों के मसलक से मुझे कोई काम है।
शाबाश उमैया, आफरीन हो तुम पर, तुमने वाकई में अपना मकसद अच्छी तरह से बयान कर दिया। बहरहाल हमें मोहम्मद के दीन से कोई सरोकार नहीं है।
लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तुमने बहुत से किताबें पढ़ी हैं। इंसाफ और शराफत से काम लेते हुए कह दो कि क्या मोहम्मद के सिफात उस नबी की खसूसियात से मुताबिकत नहीं रखती हैं जिसके आने का वादा किया गया है? क्यों तुमने हकीकत से चश्म पोशी कर रखी है?
आओ हम किसी और मौजू पर बात करते हैं।
आओ जाम पीते हैं।
ये दीन जो मोहम्मद लाया है इसकी इतनी अहमियत नहीं है जिसके बारे में हम इससे ज्यादा गुफ्तगू करें।
क्या कहा, अहमियत नहीं है? इसके बरक्स मेरी नजर में तो ये बहुत ही अहम है। हकीकत का इनकार उकला का काम नहीं है। अगर उसकी बातों को संजीदा नहीं लेंगे तो बेशक आगे जाकर आप लोग बहुत से मसाइल से दो चार होंगे।
ये मोहम्मद मेरा भतीजा है, कभी भी कुरैश की ताकत से गाफिल ना रहो। मेरी पेशगोई ये है कि वो भी बहुत जल्द भूले बिसरे लोगों के काफिले में शामिल हो जाएगा, ये मेरा यकीन है। दूसरी सूरत में अगर हम खतरे का एहसास करेंगे तो उसको और उसके साथियों को एक लम्हे में नेस्तो नाबूद कर देंगे।
अबू लहब, मुझे मालूम नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मोहम्मद जल्दी कुछ कर बैठेगा। अगर अपने नुफैल की बात दुरुस्त हो तो ये पुरसुकून माहौल हमेशा कायम नहीं रहेगा।
हुजूर खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी दावत आम का आगाज करें। अगरचे ये काम आपके और दूसरे मुसलमानों के साथ मक्के के सरदारों की दुश्मनी का बाइस बन सकता था, चुनांचे इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, ए हबीब, आपको जिस चीज का हुक्म मिला है उसका वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान करें और मुशरिकीन की एतना ना करें, हम उनसे निपटने के लिए यकीनन काफी हैं।
क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया? चलो जल्दी चलें, देखते हैं क्या वाकया पेश आया है।
किसी ने कोहे सबा से हायरे सुबह पुकारा है, लगता है ये लोग मक्के पर हमला करना चाहते हैं। चलो
चलो
जल्दी करो, चलो चलो।
ये जुमला अरबों में खतरे की घंटी के मुतरादिफ था।
يا بسيم يا بسيم سيدو